डैनियल की पुस्तक संख्या 102 संदेशवाहक का त्रिविध अनुप्रयोग भविष्य सूचक गतिशीलताओं का अनावरण
एलिय्याह का 13 अनुप्रयोग परमेश्वर के न्याय के निष्पादन की उस अवधि में संघ देश संदेशवाहक और आंदोलन को संबोधित करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून से आरंभ होती है और अनुग्रह काल के समाप्त होने तक चलती है। न्याय का निष्पादन उस काल से बढ़ता है जिसमें परमेश्वर का न्याय दया के साथ मिला होता है और उस समय तक पहुंचता है जब 7 अंतिम विपत्तियों में उसके न्याय बिना दया के उंडेल दिए जाते हैं।
वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाले दूत का त्रिविध अनुप्रयोग परमेश्वर की जांच न्याय के समापन काल में संदेश दूत और आंदोलन को संबोधित करता है। यही वो काल है जो 144,000 की मुहरबंदी की अवधि की पहचान करता है। वो काल संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार कानून पर समाप्त होता है जब परमेश्वर के कार्यान्वयन न्याय आरंभ होते हैं।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने मसीही अर्थात वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार किया ताकि वे दानियल अध्याय 9 पद 27 की पूर्ति में वाचा की पुष्टि करे। इस प्रकार इसने ये भी मार्ग तैयार किया कि मसीह अचानक अपने मंदिर में आए और लेवी के पुत्रों को शुद्ध करे, और ऐसा उन्होंने अपनी 3.5 वर्ष की सेवकाई के आरंभ और अंत में किया। वास्तविक मंदिर की शुद्धि उन लोगों के आत्मिक मंदिर की शुद्धि के उनके कार्य का प्रतीक थी जिन्हें लेवी के पुत्रों के रूप में दर्शाया गया है।
मंदिर को शुद्ध करने का उनका वास्तविक कार्य भविष्यवाणी की पूर्ति था, और जब उन्होंने यूहन्ना अध्याय 2 के पद 61-22 में वर्णित उस कार्य को पूरा किया तो पवित्र आत्मा ने शिष्यों को पुराने नियम का एक अंश स्मरण कराया जो मलाकी अध्याय 3 की पूर्ति में शिष्यों के शुद्धिकरण और शोधन के उनके कार्य का भाग था।
यूहन्ना के सुसमाचार के उस अंश में मसीह ने बताया कि जब उनके शरीर का मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा तो वे उसे 3 दिनों में उठा देंगे। नुक्ताचीनी करने वाले यहूदियों के साथ हुई बातचीत में ये भी जोड़ा गया कि हेरोदेस द्वारा कराए गए भौतिक मंदिर के नवीनीकरण जो उसी वर्ष पूरा हुआ था में 46 वर्ष लगे थे। यीशु अपने शिष्यों को भविष्यदर्शी वचन से संबंधित नियमों में से एक के उदाहरण के द्वारा शुद्ध कर रहे थे, ऐसे नियम जिन्हें यीशु ने स्वर्गदूतों पवित्र आत्मा और नबियों के कार्य के माध्यम से अपने वचन में प्रतिष्ठित किया था।
उसने ये भविष्य सूचक उदाहरण प्रस्तुत किया कि शाब्दिक आध्यात्मिक का प्रतिनिधित्व करता है। उसने 46 संख्या की भविष्य सूचक कुंजी को मंदिर के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। 46 दिनों की वो संख्या थी जितने दिन मूसा पर्वत पर मंदिर के निर्देश प्राप्त कर रहा था। 46 गुणसूत्रों की वो संख्या है जो मानव मंदिर का निर्माण करते हैं। 46 वर्ष 1798 से 1844 वो अवधि है जो उस आध्यात्मिक मंदिर की पुनर्स्थापना में पूरी हुई जिसे पहले पैगनवाद और फिर पोपवाद ने पाव तले रौंद डाला था।
मंदिर के 2 शुद्धिकरणों में ये प्रतीकवाद शामिल है कि 3 दिन 46 वर्षों के बराबर है। इसमें ये सिद्धांत शामिल है कि शाब्दिक अर्थ आध्यात्मिक का प्रतिनिधित्व करता है। ये भविष्यवाणी की पूर्ति और भविष्यवाणी के पूर्व कथन दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। ये दोनों शुद्धिकरण एक ऐसे सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे एक वर्ग गलत समझता है और दूसरे वर्ग को प्रकट किया जाता है।
2 शुद्धियां उस काल की पहचान करती हैं जब परमेश्वर की कलीसिया इतनी भ्रष्ट हो चुकी होती है कि वो व्यभिचारी सांपों की औलाद है जो किसी छिन्न की मांग कर रही है, जबकि वही चिन्ह उन्हें सीधे समझाया जा रहा है, क्योंकि दिया जाने वाला एकमात्र चिन्ह उस मंदिर के विनाश का चिन्ह है जो 3 दिन में उठाया जाता है।
हे सांपों की संतान, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे बोल सकते हो? क्योंकि हृदय की भरपूरी से मुंह बोलता है। तब शास्त्रियों और फरीसियों में से कुछ ने उत्तर दिया, गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। परंतु उसने उत्तर दिया और उनसे कहा, एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह मांगती है और उसे कोई चिन्ह न दिया जाएगा सिवाय भविष्यद्वक्ता योना के चिन्ह के, क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात एक बड़ी मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन दिन और तीन रात पृथ्वी के हृदय में रहेगा। मत्ती 12:34-44।
भविष्यवाणी के ये सभी आयाम वाचा के दूत के अपने मंदिर में अचानक आने की तीनों पूर्तियों में दिखाई देते हैं, जैसा कि उसने यूहन्ना अध्याय 2 में किया था।
और यहूदियों का फसा का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम गया, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को और सिक्का बदलने वालों को बैठे हुए पाया, और छोटी छोटी रस्सियों से एक कोड़ा बनाकर उसने उन्हें सबको भेड़ों और बैलों सहित मंदिर से बाहर निकाल दिया, और सिक्का बदलने वालों का धन बिखेर दिया और मेजें उलट दी, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन वस्तुओं को यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर के लिए जोश ने मुझे खा लिया है। तब यहूदियों ने उत्तर देकर उससे कहा, जब तू ये काम करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे फिर खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनते 46 वर्ष लगे और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा करेगा? परंतु वो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहा था, इसलिए जब वो मरे हुए में से जी उठा तब उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने उनसे ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और यीशु के कहे हुए वचन पर विश्वास किया। यूहन्ना 2:13-22।
वाचा का दूत लेवी के पुत्रों को चांदी और सोने की तरह शुद्ध करने और परिशोधित करने वाला था। चांदी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है और सोना विश्वास का। वाचा का दूत अपने भविष्य सूचक वचन में उनके विश्वास को बढ़ाकर अपने शिष्यों को शुद्ध करता था। वो भविष्य सूचक वचन शुद्ध करने के लिए ठहराया गया था, पर साथ ही छांटने के लिए भी। उसका भविष्य सूचक वचन सदा एक परीक्षा ठहरता है, और उसी भविष्य सूचक वचन के द्वारा लेवी के पुत्र उस काल में परिशोधित किए जाते हैं जब वो अचानक अपने मंदिर में आता है।
जिसका सूप उसके हाथ में है और वो अपने खलिहान को भली भांति साफ करेगा और अपने गेहूं को कोठार में इकट्ठा करेगा। मत्ती 3:12। ये शुद्ध करने के समयों में से एक था। सत्य के वचनों के द्वारा भूसी को गेहूं से अलग किया जा रहा था, क्योंकि वे ताड़ना ग्रहण करने के लिए अत्यधिक अभिमानी और आत्मधर्मी थे और नम्रता का जीवन स्वीकार करने के लिए अत्यधिक संसार प्रेमी थे। इसलिए बहुतों ने यीशु से मुंह मोड़ लिया। बहुत से लोग अब भी यही कर रहे हैं। आज आत्माओं की परीक्षा वैसी ही हो रही है जैसी कफरनहूम के आराधनालय में उन चेलों की हुई थी। जब सत्य को हृदय पर लागू किया जाता है तब वे देखते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। वे अपने भीतर संपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता देखते हैं, परंतु वे उस आत्मत्यागमय कार्य को उठाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए जब उनके पाप प्रकट किए जाते हैं तो वे क्रोधित होते हैं। वे ठोकर खाकर चले जाते हैं, जैसे उन चेलों ने यीशु को छोड़ दिया था, और बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो कठिन बात है, इसे कौन सुन सकता है। द डिजायर ऑफ एजेस 392।
कफरनहूम के आराधनालय में वे परखी गई आत्माएं ये समझने से इंकार कर गईं कि जब मसीह ने उनसे कहा कि उन्हें उसका मांस खाना और उसका लहू पीना होगा, तो वे एक आध्यात्मिक सत्य बताने के लिए अपनी वास्तविक देह का उपयोग कर रहे थे। ये वही भविष्य सूचक निरूपण था जो उन्होंने यूहन्ना अध्याय 2 में मंदिर के बारे में किया था। जब इस सिद्धांत को कि शाब्दिक आध्यात्मिक से पहले होता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है कठिन वचन समझा गया जिसे वे सुनना नहीं चाहते थे, तो वे मुड़ गए और फिर कभी उसके साथ नहीं चले। ये घटना यूहन्ना अध्याय 6:66-66 से में हुई, जो निकट ही आने वाले रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी पूर्व छाया 22 अक्टूबर 1844 को दिखी और जिसकी पूर्व छाया बदले में कलवरी के क्रूस में दिखी।
तब से उसके बहुत से चेले पीछे हट गए और उसके साथ फिर न चले। यूहन्ना 6:66।
यूहन्ना के दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा ने चेलों के मनों को परमेश्वर के उत्साह का वर्णन करने वाली भविष्यवाणी की याद दिलाई, और हिब्रानी तथा यूनानी दोनों में जीलस और जेलस के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता है।
क्योंकि तेरे घर के लिए जो जलन है वो मुझे खा गई है,
और जो तेरी निंदा करते हैं उनकी निंदाएं मुझ पर पड़ी हैं। भजन संहिता 09।
परमेश्वर का उत्साह जो उसकी ईर्ष्या ही है, ईर्ष्यालु परमेश्वर के रूप में उसके स्वभाव के एक तत्व को दर्शाता है। उसकी ईर्ष्या उनसे बैर रखने वालों पर तीसरी और चौथी पीढ़ी तक प्रकट होती है। यूहन्ना के दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा ने यह स्थापित किया कि वाचा के दूत द्वारा संपन्न की गई शुद्धि चौथी और अंतिम पीढ़ी में होती है। यद्यपि जब अंतिम पीढ़ी का प्याला भर जाता है, तब भी तीसरी पीढ़ी के कुछ लोग अब भी विद्यमान रहते हैं। वो पीढ़ी व्यभिचारी सर्पों की संतति है। मूसा चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे और उसी समय उन्होंने 46 दिनों तक मंदिर के निर्माण के बारे में निर्देश प्राप्त किए। उन्हीं दिनों उन्होंने व्यवस्था प्राप्त की, जिसमें दूसरी आज्ञा में ये बताया गया है कि परमेश्वर की ईर्ष्या तीसरी और चौथी पीढ़ियों में प्रकट होती है।
और उसने अब्राम से कहा, निश्चय जान ले कि तेरी संतति ऐसे देश में परदेशी होगी जो उनका नहीं है, और वे उनकी सेवा करेंगे, और वे उन्हें 400 वर्ष तक सताएंगे, और जिस राष्ट्र की वे सेवा करेंगे उसे भी मैं दंड दूंगा, और उसके बाद वे बहुत धन संपत्ति के साथ बाहर निकलेंगे, और तू शांति से अपने पितरों के पास जाएगा, तू अच्छी वृद्धावस्था में दफनाया जाएगा। परंतु चौथी पीढ़ी में वे फिर यहां लौटेंगे, क्योंकि अमोरियों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। उत्पत्ति 15:16।
प्राचीन इसराइल की अंतिम पीढ़ी में मसीही कलीसिया का वो मंदिर जिसे पतरस ने आध्यात्मिक घर कहा, स्थापित किया गया। उस इतिहास के दौरान परमेश्वर ने अपनी ईर्ष्या दो बार प्रकट की, जब उसने अपने उत्साह में मंदिर को शुद्ध किया। 18:44 में परमेश्वर ने मिलरवादियों का आध्यात्मिक मंदिर उठाया और एक बार फिर वो पूर्व चुने हुए लोगों को दरकिनार कर गया। उस इतिहास में वाचा का दूत 22 अक्टूबर 1844 को अचानक आ पहुंचा। उसके प्रकट होने की तैयारी विलियम मिलर की सेवकाए द्वारा की गई थी। जब प्रोटेस्टेंट और मिलरवादी 22 अक्टूबर 1844 के निकट पहुंचे, तो दो वर्गों की परीक्षा ली गई। प्रोटेस्टेंटों की परीक्षा अंत के समय 1798 में पहले स्वर्गदूत के आगमन पर आ पहुंची। 1831 में उस संदेश को, जो लेवी के पुत्रों को शुद्ध करना और शोधन करना था, औपचारिक रूप दिया गया। और 11 अगस्त 1840 को जब पहले स्वर्गदूत के संदेश को बल मिला, तब प्रोटेस्टेंटों की परीक्षा प्रारंभ हुई। 19 अप्रैल 1844 को प्रोटेस्टेंट इस परीक्षा में असफल हो गए और बाबुल की पुत्रिया बन गए। तब दूसरा स्वर्गदूत आया और मिलराइट्स के विश्वास की परीक्षा हुई और शुद्धिकरण तथा परिशोधन संपन्न हुआ। जब 12 अगस्त से 17 अगस्त तक एक्सेटर के कैंप मीटिंग में दूसरे स्वर्गदूत के संदेश को बल मिला, तब मिलर राइट्स के बुद्धिमान और मूर्ख सदस्यों के पृथक्करण की परीक्षा संपन्न हुई। बुद्धिमानों और मूर्खों के बीच का भेद उसी तेल से था जो मध्यरात्रि के आह्वान का भविष्य सूचक संदेश था। जब 22 अक्टूबर 1844 को तीसरा स्वर्गदूत आया, तब 46 वर्षों में मंदिर का निर्माण हो चुका था। उसी समय वाचा का दूत अचानक अपने मंदिर में आ पहुंचा।
हमारे महायाजक के रूप में मसीह का परम पवित्र स्थान में आगमन पवित्र स्थान के शुद्धिकरण के लिए, जैसा कि दानियल 8:14 में दृष्टिगोचर कराया गया है। मनुष्य के पुत्र का सनातन दिनों वाले के पास आगमन, जैसा कि दानियल 7:13 में प्रस्तुत किया गया है, और प्रभु का अपने मंदिर में आगमन, जिसकी भविष्यवाणी मलाकी ने की थी, ये सब उसी एक घटना के वर्णन है। और यही बात उस दूल्हे के विवाहे आने के द्वारा भी निरूपित की गई है, जिसका वर्णन मसीह ने मत्ती 25 के 10 कुमारियों के दृष्टांत में किया है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 4:26।
उसी समय वाचा के दूत ने मलाकी अध्याय 3 में लेवी के पुत्रों के रूप में पहचाने गए मिलराइट शिष्यों के शुद्धिकरण और परिशोधन के अपने कार्य की शुरुआत की।
जो बहुत से लोग पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों के तहत दूल्हे से मिलने निकले थे, उन्होंने तीसरे अर्थात संसार को दिया जाने वाला अंतिम परक का संदेश अस्वीकार कर दिया, और जब अंतिम पुकार दी जाएगी तब भी ऐसा ही रुख अपनाया जाएगा। इस दृष्टांत के प्रत्येक विवरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व या तो बुद्धिमान कुवारियां करती हैं या मुंह नॉर्क कुवारियां। रिव्यू एंड हेराल्ड 10 अक्टूबर 1899
जब 11 अगस्त 1840 को पहले स्वर्गदूत के संदेश को विशेष बल मिला तो बहुत से लोग मिलराइट आंदोलन में शामिल हो गए। फिर 19 अप्रैल 1846 को एक बड़े वर्ग ने आंदोलन छोड़ दिया। 22 अक्टूबर 1844 को परंपरागत दृष्टि ये है कि लगभग 50 आत्माएं विश्वास के द्वारा अति पवित्र स्थान में प्रविष्ट हुईं, ये मानते हुए कि आरंभ में तीसरे स्वर्गदूत के प्रकाश का अनुसरण करने वालों की संख्या लगभग 50 आत्माएं थीं। तो जब हमें बताया जाता है कि बहुतों ने, जिन्होंने पहले और दूसरे स्वर्गदूत के संदेशों को स्वीकार किया था, तीसरे अंतिम परखने वाले संदेश को अस्वीकार कर दिया, तो इसका क्या अर्थ है? वाचा का दूत अचानक अपने मंदिर में आया और उसने स्वर्गीय पवित्र स्थान के प्रकाश तथा तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को उन 50 लोगों पर प्रकट किया जो तीसरे स्वर्गदूत के अनुभव में आगे बढ़ते गए, पर प्रारंभ में वे तितर बितर थे। तब उनकी निराशा पहली निराशा से अधिक थी, तथापि बहन वाइट हमें बताती है कि उनकी निराशा क्रूज के बाद चेलों की निराशा जितनी बड़ी नहीं थी। दोनों समानांतर इतिहासों में मसीह ने निराश लोगों के लिए अपने भविष्यवाणी के वचन को प्रकट किया, और 1850 तक बहन वाइट कहती हैं कि उन्हें ये दिखाया गया कि प्रभु तब अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए फिर से अपना हाथ बढ़ा रहे थे।
इतनी सितंबर 1850 प्रभु ने मुझे दिखाया कि उन्होंने अपनी प्रजा के शेष बचे लोगों को वापस लाने के लिए दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया है, और कि इस एकत्रीकरण के समय प्रयासों को दोगुना किया जाना चाहिए। विखराव के समय इज़राइल आहत और छिन्न भिन्न हुआ, परंतु अब एकत्रीकरण के समय परमेश्वर अपनी प्रजा को चंगा करेगा और उनके घावों को बांधेगा। विखराव में सत्य का प्रसार करने के लिए किए गए प्रयासों का बहुत कम प्रभाव हुआ, बहुत कम या कुछ भी नहीं हो सका। परंतु एकत्रीकरण में जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बटोरने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है, तब सत्य के प्रसार के प्रयास अपने अभिप्रेत परिणाम देंगे। सबको इस कार्य में एकजुट और उत्साही होना चाहिए। मैंने देखा कि अब जब हम एकत्र हो रहे हैं, तब हमें मार्गदर्शन देने के लिए उदाहरण के रूप में विखराव का हवाला देना किसी के लिए भी लज्जाजनक है, क्योंकि यदि परमेश्वर अब हमारे लिए उससे अधिक न करे जितना उसने तब किया था, तो इज़राइल कभी भी एकत्र न होता। जैसे सत्य का उपदेश देना आवश्यक है, वैसे ही उसे किसी पत्र में प्रकाशित करना भी आवश्यक है। रिव्यू एंड हेरल्ड, 1 नवंबर 1850।
क्रूस पर चेले तितर बितर हो गए थे, और उस इतिहास में 3 दिन बाद उन्होंने अपने तितर बितर चेलों को इकट्ठा करना शुरू किया। 1844 के अंत के लगभग 3 वर्ष बाद मसीह ने अपने तितर बितर झुंड को इकट्ठा करना शुरू किया। उस इतिहास में उन्होंने अपने लोगों का मार्गदर्शन किया कि वे प्रकाशन कार्य प्रारंभ करें और हबक्कू की 2 पट्टिकाओं में से दूसरी पट्टिका को प्रकाशित करें जो 1850 के अंत में तैयार की गई, और फिर जनवरी 1851 में रिव्यू एंड हेरल्ड में बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने लगी। 1843 का चार्ट पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों के इतिहास में स्थापित उस मंदिर को शुद्ध करने वाले संदेश का भौतिक प्रतिनिधित्व था। तीसरे स्वर्गदूत के आगमन के साथ परमेश्वर ने अपना कार्य समाप्त करने और अपने लोगों को घर ले जाने की योजना बनाई, परंतु उन्होंने प्राचीन इज़राइल की तरह विद्रोह किया और तब प्राचीन तथा आधुनिक दोनों इज़राइल को जंगल में भटकने के लिए ठहराया गया। यदि वे एडवेंटिस्ट, जिन्होंने प्रारंभ में तीसरे स्वर्गदूत के प्रकाश को स्वीकार किया था, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते और अपने संदेश के भौतिक प्रतिनिधित्व, जो 1850 का चार्ट था, को साथ रखते, तो वे यीशु के दूसरे आगमन को ले आते और घर लौट जाते। परंतु उनका भाग्य ये था कि वे यहोशु और कालेब तथा उन 10 अविश्वासी जासूसों का इतिहास दोहराए।
यदि 1844 की महान निराशा के बाद एडवेंटिस्टों ने अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रखा होता और परमेश्वर के खुलते हुए प्रबंध में एकजुट होकर आगे बढ़े होते, तीसरे स्वर्गदूत का संदेश स्वीकार करके और पवित्र आत्मा की शक्ति में उसे संसार को प्रचार करते, तो वे परमेश्वर का उद्धार देख लेते। प्रभु उनके प्रयासों के साथ सामर्थ्य से कार्य करता, कार्य पूरा हो गया होता और अपने लोगों को उनका प्रतिफल देने के लिए मसीह अब तक आ चुका होता। परंतु उस निराशा के बाद आए संदेह और अनिश्चितता के काल में बहुत से एडवेंट विश्वासियों ने अपना विश्वास छोड़ दिया। इस प्रकार कार्य में बाधा पड़ी और संसार अंधकार में छोड़ दिया गया। यदि समूचा एडवेंटिस्ट समुदाय परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास पर एक हो जाता तो हमारा इतिहास कितना भिन्न होता। इवेंजेलिज्म 695।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और विलियम मिलर ने मार्ग तैयार किया ताकि मसीह अचानक आए और ऐसे लोगों को शुद्ध करे जो पवित्र आत्मा की शक्ति के अधीन उद्धार का संदेश पूरे संसार में ले जाए। मसीह के चेलों ने अपना नियुक्त कार्य पूरा किया, परंतु एडवेंटवाद की शुरुआत ने ऐसा नहीं किया। 1856 तक वे लाओदिकिया की दशा में गिर चुके थे, सात समय के उन्नत प्रकाश को अस्वीकार कर दिया और 1813 सब में बढ़ती हुई बगावत की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक बढ़ती चली गई। 1813 सब में बगावत 10 जासूसों की बगावत का प्रतिरूप थी। मरुभूमि में 40 वर्षों की भटकन के अंत में प्राचीन इज़राइल को उसी परीक्षा पर फिर से लाया गया और इस प्रकार ये आधुनिक इज़राइल को आरंभिक परीक्षा पर वापस लाए जाने का उदाहरण प्रदान करता है। कादेश में 10 जासूसों की बगावत 40 वर्ष बाद फिर वही दोहराई गई। 10 जासूसों की वही बगावत जिसने मरुभूमि में 40 वर्षों का भटकाव लाया 1863 की बगावत का प्रतिनिधित्व करती है, जब आधुनिक इज़राइल ने लाओदिकिया की मरुभूमि में अपने ही भटकने का कारण बनाया। 40 वर्षों के अंत में प्राचीन इज़राइल को फिर से कादेश लाया गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो परीक्षा जिसने 1863 की बगावत के समय मिलर राइट एडवेंटिज्म का शुद्धिकरण किया था तब फिर दोहराई जाएगी, जब वाचा का दूत फिर से अचानक अपने मंदिर में आएगा। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
गिलाद और बाशान की विजय के समय बहुत से लोगों को वे घटनाएं याद आईं, जिनके कारण लगभग 40 वर्ष पहले कादेश में इज़राइल लंबे मरुभ्रमण के लिए अभिशप्त हो गया था। उन्होंने देखा कि प्रतिज्ञात देश के विषय में जासूसों की रिपोर्ट कई दृष्टियों से सही थी। नगरों के चारों ओर प्राचीरें थीं और वे बहुत बड़े थे और उनमें विशालकाय लोग बसते थे, जिनकी तुलना में इब्रानी तो मात्र बौने थे। पर अब वे देख सकते थे कि उनके पूर्वजों की घातक भूल परमेश्वर की सामर्थ्य पर अविश्वास करना थी। इसी एक बात ने उन्हें उसी समय उस उत्तम भूमि में प्रवेश करने से रोक दिया था। जब वे पहली बार कनान में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे तब ये उपक्रम अब की तुलना में कहीं कम कठिनाइयों से घिरा था। परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की थी कि यदि वे उसकी वाणी का पालन करेंगे तो वो उनके आगे आगे चलेगा और उनके लिए लड़ेगा, और वो भूमि के निवासियों को खदेड़ने के लिए बर्रभी भेजेगा। राष्ट्रों में भय अभी सामान्य रूप से जागृत नहीं हुआ था और उनके आगे बढ़ने का विरोध करने के लिए बहुत कम तैयारी की गई थी। पर जब अब प्रभु ने इज़राइल को आगे बढ़ने की आज्ञा दी तो उन्हें सतर्क और शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध आगे बढ़ना था और बड़ी तथा भली भांति प्रशिक्षित सेनाओं से जूझना था जो उनके आगमन का प्रतिरोध करने की तैयारी कर रही थी। ओग और सीहोम के साथ अपने संघर्ष में लोगों को उसी परीक्षा में लाया गया जिसमें उनके पूर्वज बुरी तरह असफल रहे थे, परंतु ये परीक्षा अब उस समय से कहीं अधिक कठोर थी जब परमेश्वर ने इज़राइल को आगे बढ़ने की आज्ञा दी थी। जब उन्हें प्रभु के नाम से ऐसा करने की आज्ञा दी गई थी तब उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, तब से उनके मार्ग की कठिनाइयां बहुत बढ़ गई थीं। इसी प्रकार परमेश्वर आज भी अपने लोगों की परीक्षा लेता है और यदि वे परीक्षा सह नहीं पाते तो वो उन्हें फिर से उसी बिंदु पर ले आता है और दूसरी बार परीक्षा और भी निकट आएगी और पिछली से अधिक कठोर होगी। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वे कसौटी पर खरे न उतरें, या यदि वे फिर भी अवज्ञाकारी रहें तो परमेश्वर उनसे अपना प्रकाश वापस ले लेता है और उन्हें अंधकार में छोड़ देता है। पितृपुरुष और भविष्यद्वक्ता 36-37।